ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के कहेंगे ओम शांति, इसको महसूस करके कहेंगे ओम शांति। गुड आफ्टरनून, राधा, गुड इवनिंग। ऑलराइट, आज हमारे मध्य में हैं कमल भाई साहब। आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जिनकी एक्सपर्टीज है मेंटल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपको बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, अभी इसका विस्तार सुनते जाएं। एंड स्पिरिचुअलिटी में हैं आप एक इंटरनेशनल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेंटल वेलनेस ट्रेनर हैं। आपने विश्व भर में हज़ारों को मेंटल वेलबींग में ट्रेन किया है। आपके कई ऑनलाइन वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसके द्वारा आपने 300,000 से भी अधिक लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी और अनेक प्रकार के एडिक्शंस जो होते हैं, जितने भी हमें एडिक्शंस लगते हैं, उनसे, उन समस्याओं से, जटिल से जटिल समस्याओं से छुटकारा दिलाया है। आप डिजिटल डिटॉक्स, माने जो आजकल का डिजिटल दुनिया है उसका डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मेंटल वेलबींग पर आप रिसर्च कर रहे हैं। और पीस ऑफ माइंड टीवी पर यूथ कनेक्ट नाम से एक टीवी सीरीज चलती है, जिसमें आपने 50 से भी अधिक एपिसोड्स किए हुए हैं। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, पायनियरिंग ऑफ थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी, टीम बिल्डिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग इत्यादि, इंटरनेशनल लीडरशिप, डीलिंग विद मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज, पॉजिटिव थिंकिंग और ऐसी अनेकों टॉपिक, इन टॉपिकों की लिस्ट बहुत ही अधिक लंबी है। आपने इन पे बहुत ही ज़्यादा, माने 1500 से भी अधिक वर्कशॉप्स कराए हैं, सेमिनार कराए हैं, आपकी टीवी पर 600 से भी अधिक एपिसोड्स इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं आई हुई हैं। पीस ऑफ माइंड टीवी, अवेकनिंग टीवी, अगर आप देखते हैं, इनमें सारी इन चीज़ों को किया आपने। देश के अनेकों डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी हमारे भारतीय सशस्त्र सेना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, CRPF, ITBP इत्यादि सभी में अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करी है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली और इतने क्वालिफाइड ट्रेनर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं भाई साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के टॉपिक एंगर मैनेजमेंट पर हमारा ज्ञानवर्धन करें और हमें इस जटिल से जटिल चीज़ को सुगम और आसान बनाने में मदद करें। ओवर टू यू कमल भाई साहब। ओम शांति।
थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओम शांति। सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओम शांति। अभी ठीक है, थोड़ा सा स्माइल करके बोलेंगे ओम शांति, क्योंकि आपका आज एक टॉपिक हुआ होगा, या आज हुआ या कल होगा आपका, शायद आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग हुआ है। यस, कल है या कल होगा? ओके, ठीक है। आज इससे पहले हुआ? हाँ, आज हुआ। राइट, तो क्योंकि इधर कह रहे हैं ना कल, तो मुझे लगा कि तो खुश कैसे रहे, क्योंकि जीवन जीना, जीवन तो सब जी रहे हैं, दुखी होकर, परेशान होकर या खुश रहकर, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। किसी से हम पूछते हैं जब मिलते हैं, नॉर्मली किसी से भी आप भी मिलते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? कैसे हैं, है ना? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? मज़े में, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी किसी का आंसर थोड़ा अलग होता है, है ना? इट डिपेंड्स। एक्चुअल में अलग अलग दिन कई बार आंसर क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है, या अलग अलग सिचुएशन में हमारा आंसर कई बार अलग अलग होता है। कभी कभी हम जब बहुत खुश होते हैं तो बोलते हैं कि मज़े में है एकदम, है ना, बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। और जब कुछ ऊपर नीचे कई बार चल रहा होता है तो कई बार क्या बोलते हैं, बस क्या करें। या कई बार हमारा स्टैंडर्ड रिप्लाई हो जाता है, जैसे बचपन से सिखाया जाता है ना, कैसे हैं, तो बोलना है ठीक है, आप बताइए कैसे हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? लेकिन कई लोगों का आंसर आज हो जाता है, बस कट रही है, बस चल रही है। और कई बार हमें ये समझ नहीं आता है कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हमारा रिप्लाई है, एक्चुअल में जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आता है। कहा जाता है दुनिया में कि यूनिवर्स इज लिसनिंग, ये जो यूनिवर्स है ये सुन रहा है, बहुत ध्यान से हमें बोलना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है कि जो हम बोल रहे हैं बार बार, सोचिए कोई व्यक्ति है और वो बार बार कहे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक सिचुएशन है उसको एक व्यक्ति प्रॉब्लम बोलता है, दूसरा व्यक्ति चैलेंज बोलता है। एक व्यक्ति है उसी सिचुएशन में वो कहता है कि अब मजा आएगा। एक बार हम एक वर्कशॉप कर रहे थे बच्चों के साथ, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स दी उनको जो उनको सॉल्व करनी है, तो उनमें से एक बच्चा था वो इतना खुश हो गया जब उसको मुश्किल दी गई ना, कहते हाँ और मुश्किल दो मेरे को, थोड़ा और मजा आ रहा है। दैट मीन्स हमारी नज़र, ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन, एक व्यक्ति को प्रॉब्लम लगेगी और दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि ये बहुत अच्छा चैलेंज है, इससे अगर मैं बाहर निकला तो मेरी इंटरनल प्रोग्रेस होगी। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, या सिचुएशन सेम हो सकती है पर अलग अलग व्यक्ति उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ये यहां से समझ के जाएं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने समझा होगा आत्मा की तीन शक्तियां हैं, है ना, कौन कौन सी हैं तीन पावर्स, मन बुद्धि और संस्कार। इसको पक्का करना है, मन क्या करता है, सोचता है ना। आज के सेशन में भी आपने सुना कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा सोचना प्रॉब्लम है। ईटिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग इज ए प्रॉब्लम। ऐसे ही थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो मन का काम है सोचना, तो हमें सोच को खत्म नहीं करना है, यहां तक कि हमें सोच को रोकने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें अपनी सोच को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाना है। आध्यात्मिकता का पहला स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड। अपने मन को हमें पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव सोच सोचकर। एंड इट इज अ संस्कार, नेगेटिव सोचना भी संस्कार है ना। कई लोगों की आदत होती है हर सिचुएशन में क्या सोचते हैं, नेगेटिव। किसी की आदत होती है हर सिचुएशन में वो पॉजिटिव साइड देखना चाहते हैं, सो इट इज अ संस्कार। तो हम नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पॉजिटिव सुनना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बीच बीच में, जिसके लिए हम यहां पर एक चीज सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल। हर एक घंटे के बाद एक मिनट साइलेंस, और उसमें एक फॉर्मूला यूज करना है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं फॉर्मूला। उस फॉर्मूला का नाम है SOS। क्या नाम है? SOS। पहला एस है स्टॉप, पहला क्या है, स्टॉप। अपने मन को कहना है, क्या कहना है मन को, स्टॉप। क्योंकि मन का काम क्या है, है ना, कहां कहां सोचता है मन, किस किस चीज के बारे में सोचता है, कभी पास्ट, अभी पास्ट सोच रहा है एकदम से फ्यूचर में चला जाएगा, अभी परिवार के बारे में सोच रहा है, फिर पता नहीं कहां 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 जाकर, और फिर लगता है आधा घंटा तो हमने वेस्ट कर दिया। तो हर एक घंटे के बाद एक मिनट मन को क्या कहना है, स्टॉप। रुक जाओ, पास्ट के बारे में सोच सोच कर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मन को समझाना है। इसे कहा जाता है सेल्फ काउंसलिंग। हम सबको सीखना है सेल्फ काउंसलिंग। एक है हम दूसरे की काउंसलिंग करें या हम काउंसलिंग लें किसी से, है ना, एक स्टेप ये है। लेकिन जो काउंसलिंग देते हैं वो भी ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद नहीं करना चाहता तब तक कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। वो भी जस्ट गाइड करेगा व्यक्ति, करना किसको है, स्वयं को। तो सेल्फ काउंसलिंग मन को समझाना है नहीं, पास्ट में, पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जा जाकर ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट में आना है। ठीक है, तो पहला है स्टॉप, सेकंड है ऑब्जर्व। सेकंड क्या है? ऑब्जर्व, साक्षी होकर देखना। चलो अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं 30 सेकंड्स के लिए। अपने मन को देखिए, मन को देखना मींस अपने संकल्पों को देखिए, मेरे मन के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। ओम शांति। देखा सभी ने? देख पाए सभी? चेक कर सकते हैं कौन कौन देख पाए, मन को कौन कौन देख पाए? देखना मना आंखों से नहीं देखना है, मतलब क्या क्या चल रहा है मेरे अंदर वो कौन देख पाए? ऑलमोस्ट सभी, है ना, बाकी सब नहीं देख पाए मन के अंदर क्या चल रहा है। या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब हम मन को देखते हैं उस समय वो शांत हो जाता है एकदम, है ना, जब साक्षियों के देखते हैं मन को उस समय सब कुछ भूल जाता है वो। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, मन को साक्षी होकर देखना। तीसरा स्टेप SOS, स्टॉप ऑब्जर्व। तीसरा है स्विच। तीसरा क्या है? स्विच। मान लीजिए आपने सेकंड में ऑब्जर्व किया, अब उसमें आप एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, अब क्या करिए, एज इट इज डायरी पे लिख दीजिए क्या आपके अंदर चल रहा है। मानो आपको चिंता हो रही है, बच्चे की चिंता हो रही है, अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है, मेरा जॉब का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, जो भी, जस्ट राइट इट डाउन। कहा जाता है सबसे अच्छी हीलिंग है राइटिंग, लिखना। आप लिख लीजिए जस्ट ऑब्जर्व में, सेकंड में। थर्ड में हमने क्या किया, मान लीजिए जब आपने लिखा, आपने 6-7 थॉट्स लिखे जो आपके अंदर चल रहे हैं, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, स्विच। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपके अंदर थॉट चल रहा था पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, अब मुझे स्विच करना है, दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट। तो क्या लिख सकते हैं हम पॉजिटिव थॉट, बताएंगे कोई? फ्यूचर के बारे में अच्छा ही होगा, अच्छा और क्या सोच सकते हैं? फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना है मुझे, मान लीजिए क्या सोच सकते हैं, अपने बारे में, परिवार के बारे में, अच्छा सोचिए कुछ भी बताइए। हाँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा ही करेंगे, है ना। दैट मीन्स हमने क्या किया, वो जो नेगेटिव थॉट चल रहा था उसको स्विच किया। अब उसको 10-15 बार लिख लीजिए, आप देखेंगे धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हमारे थॉट्स नेगेटिव की जगह क्या होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा एक बार बोलिए सभी, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। अच्छे से बोलिए, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरे परिवार के साथ सब अच्छा ही होगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें क्या करने हैं, वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। तो मन जितना पॉजिटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिव अपने आप खत्म होगा. और जब हम नेगेटिव को रोकने की कोशिश करेंगे, वो नेगेटिव और बढ़ता जाएगा. तो हमें नेगेटिव को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, हमें पॉजिटिव क्रिएट करते जाना है. लेकिन पॉजिटिव क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन. रोज मुझे एक घंटा निकालना है ज्ञान सुनने के लिए. और आप इसको कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, जब आप लो फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट देखिए. नहीं तो कई लोग गलती करते हैं ये, कि जब बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे, वो कंटेंट तो देखते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मन को, लेकिन वो कंटेंट भी इतना नेगेटिव होता है कि जितना हम नेगेटिव थे उससे भी ज़्यादा नेगेटिव होके उठते हैं. तो कभी भी कंटेंट बिना अलर्टनेस के, बिना कॉन्शियसनेस के हमें नहीं देखना है. एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पहले से मैंने ये सुना था, जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन. बोलिए एक बार, माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन. मुझे अवेयर रहना है मन के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारी सीरीज हैं, आज इतना सारा कंटेंट है ना, रियलिटी शोज, पता नहीं क्या क्या है, न्यूज़ चैनल्स इतने सारे हैं. अगर मैं नेगेटिव डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, और एक न्यूज़ सुनाने का ढंग भी होता है, उसी बात को आप कितना नेगेटिव करके, कितना सेंशलाइज करके सुनाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे अंदर नेगेटिव कंटेंट नहीं डालना है, या वेस्ट कंटेंट नहीं डालते जाना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक जा रहा है. एक मिनट भी कुछ देखेंगे, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है. तो पहला है मन, दूसरा बुद्धि. बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, डिसाइड करती है. जैसे आप सब के पास जब ये गया होगा, आना है, तो आपने डिसाइड किया होगा ना, जाना है नहीं जाना. अच्छा, यहाँ आने के बाद भी सेशन अटेंड करना है या नहीं करना है. सेशन अटेंड करने के बाद भी, अब सुनते सुनते भी, आप में से हो सकता है कुछ लोग सुनते सुनते कह रहे हैं, हाँ ठीक है, गुस्सा करना तो पड़ेगा ही, कुछ भी कर लीजिए, है ना. कुछ कहेंगे, नहीं नहीं बात तो सही है, गुस्से के बिना काम चल सकता है, अभी मुझे गुस्सा आता है, बट इस पे काम किया जा सकता है. ये कौन डिसाइड कर रहा है? बुद्धि. और तीसरा है संस्कार. कोई भी संस्कार कैसे बनता है? रेपिटेशंस. तो हम किसी भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं, कोई भी नया संस्कार हम बना सकते हैं, राइट. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सुंदर है, एंगर मैनेजमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एंगर. लेकिन उससे पहले, जैसे कहा कि कोई पूछता है कैसे हैं, तो क्या आंसर देंगे? कोई कहता है ठीक है, चल रही है, कभी ऐसा नहीं बोलना है. और आजकल एक आंसर बहुत लोग बोलना शुरू कर गए हैं, उनसे पूछा जाता है ना कैसे हैं, तो आजकल कई लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं अभी तक तो ठीक है ना. ये आंसर बहुत लोग बोलते हैं आजकल, अभी तक तो ठीक है. तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा अभी तक तो ठीक है का मतलब क्या है? तो कहते आगे का पता नहीं क्या होगा. फ्यूचर का पता है? जानते हैं आप में से कोई फ्यूचर अपना? यस और नो? अनसर्टेन है तो फिर यही बोलेंगे, क्या पता नहीं क्या होगा, ऐसा ही बोलेंगे फिर? नहीं, फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, कंडीशन है. लेकिन एक क्या कंडीशन है? अगर मेरा प्रेजेंट अच्छा है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा. लॉ ऑफ कर्मा, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर. इसलिए आध्यात्मिकता में एक बात सिखाई जाती है, जो हमारे रोज के सेशन होते हैं ना, रोज की जो क्लास, मुरली क्लास बोलते हैं, उसमें एक बात सिखाई जाती है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी की नेगेटिविटी, किसी की कमियां नहीं देखनी है. क्यों? क्योंकि जो हम देखेंगे, मान लो मैं किसी की कमी देखता जा रहा हूं, लोग मेरी क्या देखेंगे फिर? लॉ ऑफ कर्मा. आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चार लोग बैठकर किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलना ही है। तो यहां सिखाया जाता है हमें दोनों दूसरों को क्या देनी है, क्या देनी है दूसरों को, ब्लेसिंग्स। क्या देनी है दूसरों को, ब्लेसिंग। सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों से भी दे सकते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन शब्दों से भी पहले क्या जरूरी है, मन से। जिसको भी देखें, जिससे भी मिलें, उसको हमें क्या देनी है, ब्लेसिंग्स। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक एक का ग्रुप बना लेंगे, जैसे दो लोग हैं, हाँ एक दूसरे को देखेंगे, आप इनके साथ, ये इनके साथ, ऐसा करके, हाँ ओके। हो सके तो बहनें बहनों के साथ बनाएं और भाई भाई के साथ बनाएं, पॉसिबल हो तो ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा मिक्स भी है तो कोई बात नहीं, ओके। हाँ जी, हाँ नहीं, आप तो इनके साथ बनाइए ना ब्रदर, आप तो इनके साथ हैं, देखो हाँ ये इनके साथ हैं, हाँ कोई बात नहीं, नहीं आप उनके साथ ही बनाने दीजिए ना, कोई उनको ब्लेसिंग आपको देनी है, कोई बात नहीं, आप अकेले रहिए। कोई बहन है, हाँ इनके साथ बना लीजिए, इधर ना, दूर से भी हो जाएगा, दूर से भी हो जाएगा, बहुत पास जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्योंकि वाइब्रेशंस हमारे दूर से भी पहुँचते हैं, ठीक है। चलो एक दूसरे को देखेंगे, वो एक दो तो इतना गुस्से से देख रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा क्यों? चलो एक दूसरे को देखिए, मैं जो बोलूंगा आपको दिल से बोलना है दूसरे को, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप विशेष हैं, परमात्मा आपके साथ है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप सदा स्वस्थ रहे, आपके साथ सब अच्छा ही होगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो अभी एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं या गले लग सकते हैं, जैसा आपको संभव लगे। चलो बैठ जाएंगे सभी, ओके। देखो आप सबके चेहरे पे क्या आ गई है ना, स्माइल आ गई। तो खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज खत्म हुआ, मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद हैदराबाद में गया जॉब करने। कॉलेज में भी मैंने यही ऑब्जर्व किया, उसके बाद जब मैं जॉब करने गया तब भी मैंने यही ऑब्जर्व किया कि लोग खुश नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं हूं। तो मन में बहुत सारे प्रश्न चलने लगे, मन में लगा कि बचपन से सोचा था, क्योंकि छोटे शहर से थे, कि जॉब लग जाएगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट खुशी नहीं है, लोग रात को नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा फिर एमबीए की तैयारी भी करनी शुरू कर दी, क्यों करनी शुरू की, कोई इंटरेस्ट नहीं था, ओनली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, सब कर रहे थे तो लगा करना ही पड़ेगा। तो ये करते करते बहुत सारे मन में प्रश्न चलते थे और एक क्वेश्चन चलता था कि आज से 15-20 साल के बाद जब मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, जो मेरे सीनियर्स थे, मुझे लगता था वहां पहुंच जाएंगे, आज पैसे थोड़े कम हैं, वहां पहुंचेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब उनसे मिलते थे वो भी टेंशन में है, वो भी स्ट्रेस में है, तो समझ ही नहीं आता था खुशी क्या है। तो इस पर बहुत सारा चिंतन चलना शुरू हुआ, अलग अलग बुक्स पढ़नी शुरू की, अलग अलग लोगों को सुनना शुरू किया, अलग अलग संस्थाओं में जाना शुरू किया कि मन शांत क्यों नहीं है, क्यों खुश नहीं है हम, क्यों मन प्रेजेंट में नहीं रहता है। तो कईयों ने कहा मेडिटेशन करना शुरू करिए, तो ठीक है मेडिटेशन करना शुरू किया। अब आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने मेडिटेशन कभी भी किया होगा, कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बैठते हैं तो मन प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, है ना। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया, हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो शुरू शुरू में, कि जब मन, जब हम प्रेजेंट में बैठते हैं तभी सारे काम याद आने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता था ये तो काम भी नहीं है जो मुझे याद आ रहा है। तो वहां एक टेक्निक खुद ही मैंने इसको यूज़ किया। मैंने क्या किया, एक डायरी पेन लेकर बैठना शुरू किया, मन को कहा 5 मिनट बैठना है प्रेजेंट में, कुछ भी याद आता था जस्ट राइट इट डाउन, अभी नहीं, अभी 5 मिनट नहीं, बाद में करेंगे इसको। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शांति, थोड़ी थोड़ी खुशी एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। तो लगा कि हाँ ये तरीका सही है। जैसे अभी हमने किया ना, एक छोटी सी प्रैक्टिस की हमने, उसमें क्या किया, दूसरों को ब्लेसिंग्स दी, है ना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचा, खुश कौन हुआ, हम भी हुए, सामने वाला भी हुआ। अच्छा, दोनों में से ज्यादा खुशी कब मिली, जब दूसरे ने हमें ब्लेसिंग दी या हमने दूसरे को ब्लेसिंग दी? अच्छा, ऐसा, जब हमने दूसरों को ब्लेसिंग। एक जगह मैं था तो एक भाई ने कहा, ये तो सब कहते हैं कि दूसरों ने, दूसरों को देते हैं जब हम, उसने कहा जब मेरे को दूसरे ने ब्लेसिंग दी ना, कहते आज पहली बार जीवन में मेरे लिए किसी ने अच्छा सोचा। क्योंकि ऐसा कुछ हद तक सही भी है इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया धीरे धीरे क्या हो गई है, थोड़ा कलयुग बोलते हैं, कलयुग है ये। ज्यादातर लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिलते हैं या अप्रिशिएट करने वाले, है ना, ज्यादातर लोग कैसे मिलेंगे, क्रिटिसाइज करने वाले। तो अगर कोई हमें रोज क्रिटिसाइज करता जा रहा है, सोचिए लो सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ एस्टीम क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है खुशी गायब होने का, बचपन में अगर कोई हमें बहुत क्रिटिसाइज करता है, इसको बोलते हैं चाइल्ड ट्रॉमा, इनर चाइल्ड साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको एप्रिशिएट भी करिए। नहीं तो हमें क्या लगता है, इनके भले के लिए हम समझा रहे हैं, है ना, लेकिन उनके भले के लिए अच्छी बात है, बट उनको उनकी कमियां तो बतानी है, किसी की भी, जूनियर की, साथ में कोई पति पत्नी जो भी आपस में है, कमी तो बतानी है। लेकिन एक मेथड है जो हमें यूज करना है, उस मेथड का नाम है सैंडविच मेथड। कौन सा नाम है, सैंडविच। दैट मींस किसी की भी अगर आपको कमी बतानी है, सबसे पहले उसकी विशेषता उनको बताइए, फिर उनकी कमी बताइए, फिर उनकी विशेषता बताइए। सैंडविच, विशेषता, बीच में कमी, फिर विशेषता। अभी हम एक जगह पर प्रोग्राम करने गए, 3-4 दिन का सेशन था, तो हमारे साथ एक भाई थे जिन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया, साथ में गए सारा कुछ। तो जब मैं वापस आ रहा था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ कमी बताइए, बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। आप कहेंगे कि कोई कमी पूछे, हम तो बिना पूछे बता देंगे, है ना, कोई पूछे ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कमी बताने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताइए, तो मैंने बोला अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद उनका फोन आया 2-3 दिन के बाद, उन्होंने कहा मुझे ना मेरी एक कमी बताइए कोई। तो मैंने कहा कि देखो आपके अंदर ये विशेषता है ऐसा, कहते ये मेरे को मत सुनाइए विशेषता है, कमी बताइए सिंपल। तो मैंने बोला देखो वो मेरी मर्जी है। तो एक्चुअल में उनके अंदर बहुत सारी, हाँ, कमियां थी मुझे पता है, पर पहले विशेषताएं, उसके बाद अब दो चीज़ें, आप बताना दोनों में से सही क्या है। एक है मैं बोलूँ कि आपके अंदर ना ये कमी है, ये चेंज करो। दूसरा है हमने उनको कहा कि आपके अंदर एक चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये है कि आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं, इसको थोड़ा सही करिए। कौन सा तरीका सही है, पहला या दूसरा? सेकेंड। क्योंकि जब हम ये बोलते हैं आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है, बहुत सारे चांसेस हैं कि उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म। और जब 10 लोग बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं दिन में, लो कॉन्फिडेंस। एक स्कूल में हम प्रोग्राम करने गए तो मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन बोलता है? मेरा भाव अलग था, मेरा भाव था कि हम खुद बोलते हैं खुद को नेगेटिव। एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई 6th क्लास की, उसने क्या कहा होगा? उसने कहा मेरी मम्मी। बहुत इनोसेंट आंसर था उसका। अब उनकी मदर से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगी, इसके भले के लिए मैं समझाती हूं इसको, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन हमारे बार बार नेगेटिव बोलने से सामने वाले के मन पर प्रभाव पड़ता है, और हो सकता है कभी कोई बहुत डाउन फील कर रहा है और आपका एक शब्द शायद उसके अंदर पावर भर दे, है ना? तो आज से हम सीख कर जाएंगे, हमें दूसरों को क्या करना है, एप्रिशिएट, दूसरों को ब्लेसिंग्स दीजिए। 10 कमियां हैं, 1 विशेषता है तो भी विशेषताएं देखनी है, है ना? और अगर 1 कमी है 10 विशेषताएं, तो विशेषताओं पे ही फोकस करना है, और कभी कभी समझा देना है उस कमी के लिए। तो गुस्सा खत्म करने के लिए सबसे सिंपल जो तरीका है वो है खुश रहना। खुश रहना, पॉजिटिव रहना, मन को शांत रखना। मन को खुश रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ऑटोमेटिक गुस्सा हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आई थिंक चेंज, ओह यस, आइसबर्ग, आपने सुना होगा ना आइसबर्ग के बारे में। तो आइसबर्ग क्या होता है? लगभग 95% ज्यादा उसका पोर्शन नीचे रहता है, ऊपर सिर्फ थोड़ा सा दिखता है। ऐसे ही एंगर भी ऐसे ही है, बाहर दिख रहा है जो, वो तो सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा है। उसका रीजन क्या है अंदर? स्ट्रेस, टेंशन, अनहैप्पीनेस, अकेलापन, फियर, ये सब इमोशंस अंदर जब भरे हुए होते हैं, दैट मींस जब हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तब भी हम गुस्सा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब वो अंदर से बहुत परेशान है, दुखी है, शायद बहुत टेंशन है, शायद बहुत अकेला है, शायद असंतुष्ट है, शायद चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। तो अगर मुझे गुस्से को खत्म करना है तो मुझे काफी सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। इंटरनल मुझे काम करना पड़ेगा, इंटरनल हीलिंग करनी पड़ेगी, इमोशनल हीलिंग। और जैसे कहा, इमोशनल हीलिंग का सबसे पावरफुल तरीका है राइटिंग। लिखिए क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग इमोशंस हैं। एक है इमोशंस को सप्रेस करना, दूसरा है इमोशंस को एक्सप्रेस करना। दोनों में से कौन सा सही तरीका है? हमें गुस्से को या किसी भी प्रकार का इमोशन है उसको सप्रेस करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। अच्छा, चलो आगे देखेंगे हम। गुस्से का नेचर तो हमें पता है, गुस्सा सबको आता है। किस किस को आता है, हाथ खड़ा करिए। बड़ा स्माइल करके बता रहे हैं कहीं तो। अच्छा, गुस्सा हमें आता है या कोई दिलाता है? गुस्सा हमें आता है या कोई दिलाता है? दिलाता है ना, हम थोड़ी करते हैं गुस्सा। एक बहन ने यही कहा, उसने कहा देखो मैं प्रूफ कर सकती हूं गुस्सा कोई दिलाता है। मैं बोला करो प्रूफ। कहती मैं एकदम शांति से मेडिटेशन करके बैठी हूं आराम से, बच्चे का एग्जाम है, उसको मैंने बहुत प्यार से कहा बेटा पढ़ लो, अगर वो पहली बार में बात मान जाए तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बार प्यार से कहा, तीसरी बार प्यार से कहा, चौथी बार प्यार से कहा, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या निकल गया? गुस्सा। तो गुस्से का कारण कौन है? गुस्से का कारण कौन है? वो बच्चा जो पढ़ नहीं रहा, वो बच्चा जो मोबाइल यूज कर रहा है। अगर वो मोबाइल ज्यादा यूज ना करे, अगर वो पढ़ाई करे तो मुझे गुस्सा। हम गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई बार बार हॉर्न नहीं बजा रहा है पीछे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। वो क्यों हॉर्न बजा रहा है बार बार, क्यों उसने बीच में गाड़ी खड़ी की है, अलग अलग सिचुएशंस। यहां हम एक चीज सीख कर जाएंगे, कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। बोलिए एक बार। नहीं, बिल्कुल अच्छे से आवाज नहीं आई, मतलब वो आवाज नहीं आई जैसे होता है ना कि हाँ हम एग्री करते हैं, आपने कहा है तो बोल देते हैं, लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं। एक बार बोलिए, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, है ना। वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, माँ को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, 100% होना पड़ेगा। अगर एक माँ या पिता स्ट्रिक्ट नहीं है वो प्रॉब्लम है, कई जगह पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बट गुस्सा इज नेवर ए सॉल्यूशन। गुस्सा और स्ट्रिक्टनेस, गुस्सा और शक्ति, गुस्सा और स्ट्रिक्टनेस, दोनों में क्या डिफरेंस है आप में से कोई बताएंगे? एंगर एंड स्ट्रिक्ट, दोनों में फर्क है या नहीं है? फर्क तो है। क्या फर्क है? हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी, एंगर इज वीकनेस और स्ट्रिक्टनेस इज पावर। स्ट्रिक्टनेस पावर है, ठीक है। और बताएं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस जो है, और एंगर, सॉरी, कंट्रोलिंग पावर नहीं है एंगर मीन्स। हाँ जी, पीछे कौन बोल रहे हैं? सॉरी, राइट। नहीं, गुस्सा भी तो किसी का संस्कार बन सकता है। हाँ, वो अलग बात है। जैसे सही, आपने सही बोला बिल्कुल। इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, आप सबके आंसर सही है एक्चुअल में, पीछे भी जो बहन ने बोला। स्ट्रिक्टनेस को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, एंगर इज नेगेटिव। या हम कहें एंगर का मतलब क्या है, आप कोई बात किसी को बोल रहे हैं बट आप अंदर से बुरा फील कर रहे हैं, योर माइंड इज नॉट स्टेबल, है ना। माइंड स्टेबल नहीं है, हम गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स मेरा मन, मेरे शब्द मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट स्ट्रिक्टनेस में आपका मन शांत है। कैसे मन शांत है? क्योंकि आपने अपने को समझाया कि ये जो बच्चा है इसके अपने संस्कार हैं, ये आत्मा है, इसके अपने संस्कार हैं, इसकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है, मुझे इसकी यात्रा, इसके संस्कारों के कारण दुखी होने की जरूरत, मेरा, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसको समझाना है। मैं बहुत प्यार से प्लस कई जगह शक्ति यूज करके इसको समझाना है, बाकी इसका भाग्य। इसको कहा जाता है साक्षी भाव, मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बच्चा तो है लेकिन यहां का जो पहला लेसन है, वो बच्चा होने के साथ क्या है, एक आत्मा है और उसकी एक लंबी यात्रा है। आप अपनी यात्रा पे हैं, वो अपनी यात्रा पे है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को डांटने का। एक माँ को भी अधिकार नहीं है एक्चुअल में डांटने का, मींस गुस्सा करके। हाँ, स्ट्रिक्ट क्यों होना है? क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रिक्ट होना है, पर उसको बार बार नेगेटिव बोलना, बार बार परेशान होना, वो नहीं। ये कब कर पाएंगे? जब हमारा मन शांत होगा तब हम गुस्से की जगह किसको यूज कर पाएंगे? स्ट्रिक्टनेस। एक एम्प्लॉई है, वो समय पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको हमेशा माफ करते जाना है, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि देखो कल से आप समय पे नहीं आए तो आपको ये फाइन होगा, या जो भी अलग अलग चीजें, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन मैं दुखी होता रहूं, यहां पे परेशान हूं, दुखी हूं, अशांत हूं, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंगर, ये हम सब जानते हैं कि जब गुस्सा आता है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां मन के कारण है, है ना। आज जो कैंसर बहुत लोगों को हो रहा है या हार्ट अटैक्स हो रहे हैं यंग एज में, उसका लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन उसका मेन कारण है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मींस कंटिन्यूअस। एक बार हाथ लाइए सभी अपना आगे। और मोबाइल रखिए हाथ पे, मोबाइल या पेन जो भी आपके, मोबाइल है तो मोबाइल रखिए, पेन है तो पेन रखिए, बिल्कुल सीधा करेंगे हाथ को। अब मान लीजिए हमें एक मिनट के लिए ऐसे रखना है हाथ, इजी डिफिकल्ट? इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किसी किसी का तो अभी भी ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए इजी है, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट्स रखना है, थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ कुछ लोग रख पाएंगे जिनको थोड़ा प्रैक्टिस होगा या जो थोड़े स्ट्रोंग होंगे, है ना। अच्छा, 1 घंटा रखना है तो? 1 घंटा तो बहुत मुश्किल होगा, है ना, 1 घंटा तो बहुत मुश्किल। 1 दिन रखना है? मैं कहूंगा आपको, मैं कल आऊंगा यहीं पे बैठे मिलने चाहिए आप सब। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है 1 दिन तो। अच्छा, 1 साल, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि जो हाथ को रिलैक्स करना चाहते हैं वो रिलैक्स करके बैठें, और जो इस सेशन में ऐसे ही करके बैठना चाहते हैं वो ऐसे करके बैठें। आपके पास चॉइस है, कौन सा चूज करेंगे? कर भी लिया? सभी समझदार हैं, ऑलमोस्ट सभी ने कर भी लिया, सबने कहा कि इससे अच्छा कहीं पता लगे पूरे सेशन में बिठा दे, इससे अच्छा है कि हाथ को ऐसे कर ले। क्यों चूज किया आपने पहला ऑप्शन? क्यों चूज किया? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हैं हम, ये तो हमें समझ में आता है क्योंकि दिख रहा है ये। सेम मन पर आपने 1 मिनट कोई बात को पकड़ा, मान लो किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, 1 मिनट पकड़ लिया, मन में सोचते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट भी अगर आपने पकड़ा, उसको सोचा, इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, गलत बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 5 मिनट के बाद भी अगर मन को आंसर दे दें हम, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? कब से पकड़ के बैठे हैं आप, चेक करना, हो सकता है 3 साल पहले किसी ने आपको कुछ बोला था, आज तक पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं दिन भर हमें याद रहता है, जब उस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है या उसका नाम सामने आता है, सेम इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और हमारा मन डिफरेंशिएट या हमारा शरीर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि रियल में कोई चीज हो रही है या हम इमेजिन कर रहे हैं। इसलिए उस समय किसी ने हमें कुछ बोला था, जो इमोशंस हमें फील हुए, उसका प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ा, वही सेम कब होता है ट्रिगर? जब उसके बारे में हम सोचते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए बातों को पकड़ कर नहीं रखना है, है ना। यहां पर एक पावर सिखाई जाती है, हम सबके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, उसमें से एक शक्ति है पावर टू लेट गो। कौन सी शक्ति है? पावर टू, उसके लिए एक स्लोगन दिया जाता है, बीत गई सो बात नहीं। बोलिए एक बार सभी, बीत गई सो। मन को समझाना है बार बार, पास्ट इज पास्ट, हो गया। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? उसकी मर्जी, उसने बोला ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सही हैं, कोई आपको गलत बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप सही नहीं हैं, कोई बोल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, है ना। मान लो मेरी गलती है, कोई बोल रहा है, तो अच्छी बात है, वो उसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन आपकी गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है इससे खराब इंसान कोई नहीं है दुनिया में। एक जैसे बहन आए तो ना, वो सिंगिंग बहुत अच्छे सिंगर थे, उन्होंने कहा कि ना मेरे पति जो है मेरे को बोलते हैं तुम्हारी आवाज ना कौए की जैसी है। क्या सही में मेरी आवाज ऐसी है? तो मैंने कहा कि आपको क्यों फर्क पड़ रहा है किसी की बात से? हो सकता है किसी बात से परेशान हो, कुछ और वो गुस्सा आप पे निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? लेट गो। पास्ट की बातों को पकड़कर, खुश रहने की विधि क्या है, पास्ट की बातों को पकड़कर नहीं रखना। अगर पास्ट को हम भूल पाए, मतलब भूलना मतलब ये नहीं है कि 10 साल पहले क्या हुआ याद ही नहीं है हमें, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, कहा जाता है ना फॉरगेट द पास्ट। तो मैं सोचता था मेरे को याद है क्या था, या कॉलेज में क्या था, याद है ना, पर उसको याद करके वो इमोशंस हमें फील नहीं करने हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो हमारा ही कार्मिक अकाउंट था जो सेटल हुआ। इसको हम चाहे माने या ना माने, बट सत्य यही है। आपके साथ अगर किसी ने गलत भी किया, वो भी हमारा ही कार्मिक अकाउंट था, सेटल हुआ, अब इससे बाहर निकलिए, नहीं तो प्रेजेंट में दुखी हो होकर, परेशान हो होकर हम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, राइट? तो शरीर पर इफेक्ट आता है, मन का प्रभाव हमारे शरीर पर आता है जब गुस्सा आता है, या हमारा संस्कार बन जाता है जब गुस्से का, धीरे धीरे आप देखेंगे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली एंगर क्या है, उसको कैसे सही करें, दुनिया में दो तरीके सिखाए जाते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस कर दीजिए, दूसरा है सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से आपने क्या कहा, मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए या अंदर रखना चाहिए, दबा लेना चाहिए, कर देना चाहिए? कैसे करेंगे गुस्से को एक्सप्रेस? हाँ जी, लिखकर, अच्छा, और नहीं मारना नहीं है किसी को है ना, आजकल नए नए तरीके हैं। एक बहन ने बताया, इंदौर से थे वो, उन्होंने कहा कि, मैंने ये प्रश्न जब पूछा ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पर एक दुकान है मॉल में, कहते हैं वहाँ पैसे देके जाओ, आपको एक बेसबॉल बैट मिलता है, 15 मिनट मिलते हैं, अब आप क्या करो उसमें, जो तोड़ना है तोड़ो, जो सामान तोड़ना है तोड़िए। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर आप ये करके आए, अच्छा लगा आपको 15 मिनट के बाद? कहती है वो सारा जो गुस्सा भरा हुआ था ना, सारा निकल गया, खत्म हो गया सारे का सारा। होता है ऐसा? दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग एंगर, गुस्सा अगर हम बार बार एक्सप्रेस करते हैं, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार कैसे बनता है, बार बार एक ही काम कर करके। इसलिए कभी भी ये इस थ्योरी को बिलीव नहीं करना है, गुस्सा करते जाइए खत्म हो जाएगा, कई लोग ये भी बोलते हैं, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। जितना आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, उतना ही वो संस्कार गहरा होता जाएगा। सोचो एक सर्कल है, एक पेपर पे आपने सर्कल बनाते गए, क्या हो रहा है, वो डार्क होता जा रहा है, और गहरा संस्कार हमारा बनता जा रहा है। तो एक्सप्रेस करना तो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट सप्रेशन, सप्रेसिंग, सप्रेस करना, क्या ये सही तरीका है? ये भी सही तरीका नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने उसको दबा लिया, ठीक है, अब जो व्यक्ति गुस्से को दबाता है, आप देखेंगे वो बात बात पे टोकना, या कभी कोई भी सिचुएशन है ना, वो उसी बात को ही, इसको बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। दैट मींस वो व्यक्ति समय या वेट करता है कि कोई ऐसा समय आए, वो जो मेरे अंदर गुस्सा था ना, वो मैं निकालूं, गुस्सा करके नहीं, लेकिन किसी को नेगेटिव बोल के, उसके बारे में किसी को नेगेटिव फैलाकर। दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। तो गुस्से को एक्सप्रेस करना भी सॉल्यूशन नहीं है, गुस्से को सप्रेस करना भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करें फिर? तीसरा एक और सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ, रिएक्शन टाइम बढ़ाकर, हाँ, जैसे कहा ना कि मान लीजिए हमें गुस्सा आ रहा है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, तो हम सब अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। कई जगह पे तो गुस्सा जब आ रहा है तो हमें पता है यहां तो हम गुस्सा कर नहीं सकते, हमें पता है उस चीज का कि यहां किया तो सब खराब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि वो तो गुस्सा इजीली हम रोक लेते हैं, लेकिन वो अंदर तो भरा हुआ है। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फिर वो गुस्सा कहां निकलता है, किसी और पे निकलता है ना, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं फिर हम, कि अच्छा ये व्यक्ति है ये थोड़ा सॉफ्ट टारगेट है, इस पे हम गुस्सा निकाल सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? सप्रेशन या एक्सप्रेस ना करके, तीसरा है कामिंग, काम डाउन इनसाइड, मन को शांत करना, मतलब अंदर ही गुस्सा ना आए उस पे काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं करता हूं लेकिन दुखी होता हूं, गुस्सा करना गलत है हम सब जानते हैं, लेकिन दुखी होना सही है या गलत है? दुखी होना, किसी ने मुझ पे गुस्सा किया, मैंने गुस्सा नहीं किया मैं सिर्फ दुखी हुआ, हर्ट हुआ, सही है या गलत है? सही है या गलत है? अभी आवाज नहीं आ रही है। दुखी होना मींस नेगेटिव वाइब्रेशंस, दैट इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। उसने मेरे को ऐसे कहा, देखो कितने खराब लोग हैं, इसने मेरे को ऐसे कहा, और फिर सामने वाला कहता नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत खराब है। लेकिन दुखी होकर हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, और दुखी व्यक्ति कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता है, दुखी व्यक्ति दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर सकता है। एक दुखी पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते, उनकी हेल्प करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होंगे। उसने एक बार मोबाइल नहीं छोड़ा, सोचिए किसी ने मोबाइल नहीं छोड़ा एक बार में, एक तरीका है उसको समझाओ, प्यार से गाइड करो, दस इट विल टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स, लेकिन बहुत समय लगेगा उसमें, तो पेशेंस चाहिए। और इजी तरीका क्या है? एक थप्पड़, है ना, इजी तरीका तो यही है, या मोबाइल छीन लिया। तो हमें समय स्पेंड करना है दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। तो अंदर मन को शांत कैसे करें, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं कॉलेज में था उसके बाद जब जॉब करना शुरू किया, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया, पता नहीं था क्या रीजन है लेकिन कारण था डिससेटिस्फेक्शन, खालीपन, अकेलापन वो था, और वो गुस्से के रूप में आ रहा था। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला मोहाली में, तो गुस्सा और बढ़ रहा था, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अब गुस्से का प्रभाव शरीर पर आना शुरू हो गया था, रिलेशंस पर आना शुरू हो गया था, कि कभी गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया वो आकर बोलता था आपने मेरे को ऐसा बोला, मैं बोलता हूँ मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि गुस्से में निकल गया। तो धीरे धीरे ये समझ आ गया कि मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत अलग अलग टेक्निक्स लोगों ने बताई, किसी ने कहा कि तामसिक भोजन बंद कर दो, मैंने वो बंद किया, उससे ज़रूर प्रभाव पड़ा। किसी ने कहा अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीदिंग करो, उससे भी फर्क पड़ा। लेकिन एक टेक्निक जिसने मेरे गुस्से को बिल्कुल ख़त्म किया, और जैसे कहा ना सिर्फ गुस्सा बाहर की बात नहीं कि बाहर से नहीं करना, अंदर से नहीं आ रहा, वो था 3 संकल्प 3 थॉट्स। जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया तो वहां के जो दीदी थे उन्होंने कहा, आपने भी यहां सुना होगा, वो हम जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग क्या है? हाँ, मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप। और जब हम बोलते हैं ना ओम शांति, मान लो मैंने आपको कहा, दैट मीन्स मैं अपने आप को याद दिला रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, और आपको देख के भी क्या सोच रहा हूं, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हैं। तो जब पहली बार मैं गया तो वहां जो दीदी थे कोर्स कराने वाले, उन्होंने कहा कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूं। और साथ में मेरे दोस्त गए थे, मतलब मेरे वो मैनेजर भी थे जो इंस्टीट्यूट को संभालते थे, सारा गुस्सा मेरा उन पे निकलता था जो भी प्रॉब्लम होती थी। तो वो भी हंसने लगे, उन्होंने कहा कि ये शांत है ना अगर, तो सारे शांत हैं। लेकिन वो दीदी ने कहा कि आप भूल गए हो अपने ओरिजिनल संस्कार को, पर आपका असली संस्कार शांति है। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी बात समझ आई जब उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, आप एक हफ्ते का समय दीजिए, एक महीना ये तीन थॉट्स प्रैक्टिस करिए. पहला है, बोलेंगे सर पहला क्या है थॉट, दिख रहा है आपको? आई एम अ पीसफुल एनर्जी. इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? मैं शांत स्वरूप. बोलिए एक बार सभी, मैं शांत. सेकंड, पीस इज माय ट्रू नेचर. शांति मेरा स्वधर्म है या शांति मेरा स्वभाव है. तीसरा, नो वन कैन डिस्ट्रॉय माय पीस. कोई मेरी शांति को डिस्ट्रॉय नहीं, भंग नहीं कर सकता. ठीक है, ये तीन थॉट्स दिए. क्योंकि मैं कई सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा था, मैं चाहता था गुस्सा खत्म हो. क्योंकि एक होता है ना, दूसरा आपको कहिए कि आप खुद रियलाइज करते हो कि नहीं ये तो खत्म करना पड़ेगा. तो मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया. तो दीदी ने कहा था सुबह तीन बार लिखना है, रात को सोने से पहले तीन बार लिखना है, दिन में जब आपको थोड़ा अशांत हो आपको इसको मन में रिपीट करना है. प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैं दिन भर इसको लिखता रहता था. जब मुझे समय मिलता था एक मिनट, मैं ये लिखना शुरू कर देता था, मैं शांत हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है. और यहाँ उस एनर्जी को फील करता था. आत्मा का रहने का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर. चार दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा. मैं दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी इट इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है. तो उन्होंने क्या कहा, एक हफ्ता आपने प्रॉमिस किया था, एक हफ्ता तो करो फिर देखेंगे. छठा दिन था जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह चेंज कर दिया. बहुत सुना था कि शांति मेरा स्वधर्म है, शांति अंदर ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. हम सब ने सुना होगा ये, है ना, कि शांति कहाँ पे है, अंदर या बाहर? अंदर ही है, अंदर ही ढूंढना. तो मैं सोचता था अंदर है तो मिल क्यों नहीं रही फिर. लेकिन दैट वॉज द डे जिस दिन सिर्फ ज्ञान सुना नहीं, अनुभव किया. इसलिए कहा जाता है अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है. तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो हमारा एक टेस्ट चल रहा था बच्चों का. तो एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, तो मैंने उसको बड़े प्यार से दूसरी जगह बिठाया. वहां भी चीटिंग कर रहा था, उसको बड़े प्यार से बिठाया उधर. तो एकदम से उसको क्या हुआ, वो मेंटली डिस्टर्ब था पहले से ही. आया, सबके सामने आंसर शीट ली और ऐसे मेरे चेहरे पे फेंक दी कि सर आपको कुछ आता तो है नहीं और बैठे रहते हो, पढ़ाई कुछ पढ़ाते हो नहीं, फीस लेके और ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोला. गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा गुस्सा छोड़ देते हैं, हर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबके सामने मेरे के बारे में ऐसा बोल दिया, जबकि मैं अपना 100% दे रहा हूं. मैं रात को 10:30, 11 बजे तक उनको पढ़ाता था. एक्चुअल में ऐसा था. पर उस दिन पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूं, शांत स्वरूप आत्मा. मन में थॉट चल रहा था, इसने जो बोला इसकी मर्जी है, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे अशांत क्यों होना है? एक है गुस्सा नहीं करना है, वो नहीं था. मन शांत, मैं अपने ऑफिस में बैठा, इतना मुझे खुशी. तीन चीजें मुझे फील हुई उस दिन, आत्मा की तीन गुण मुझे फील हुए, शांति, शक्ति और खुशी. शक्ति क्यों फील हुई? माय माइंड इज इन माय कंट्रोल. मुझे गुस्सा करना है मेरी मर्जी, मुझे दुखी होना है या नहीं होना मेरी मर्जी है. और खुशी फील हुई, इतने सालों से जो मैं ढूंढ रहा था आज जाकर मुझे वो मिला. और वो दिन था जब मैंने डायरी पर लिखा था कि ये जो शांति मुझे फील हुई है आज से मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे दूसरों को ये शांति फील करानी है. क्यों? क्योंकि स्कूल में देखा सभी स्ट्रेस में, कॉलेज में देखा सभी स्ट्रेस में, जॉब कर रहा हूं तब सब स्ट्रेस में, एमबीए की तैयारी कर रहा हूं सब स्ट्रेस में. तो लगा कि दिस इज द वे. ये मुझे समझ आया है अब कि असली शांति क्या है. ठीक है, तो आप में से कौन कौन प्रैक्टिस करेगा अगले एक हफ्ते के लिए कम से कम, हाथ उठाइए. करेंगे सभी पक्का से? भूल तो नहीं जाएंगे? ये तो होता है ना, यहां के वाइब्रेशंस अलग होते हैं, यहां से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं सारा. हाँ अच्छा था जो भी था. इसलिए कहा जाता है ना सत्संग में भी कि सत्संग से जब उठो कहते हैं झोली झाड़ के उठना चाहिए. क्यों? ताकि यहां की बातें यहीं ठीक है, घर पे नहीं लेके जानी है. लेकिन ऐसा नहीं है. तो इसलिए हमें अपने लिए क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, बोलिए एक बार, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता, बोलिए सकता, ठीक है, कोई जब आपकी बात नहीं मान रहा है मन में क्या बोलना है, कोई मुझे अशांत, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है मन में क्या बोलना है, कोई मुझे अशांत, शब्दों में नहीं बोलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, तो कैसे हम गुस्से को दूर रखें, उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है डीप ब्रीदिंग। ये हम सबको करनी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करेंगे हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो है, हम पूरा सांस ही नहीं लेते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग कम से कम दिन में दो बार, पांच मिनट मिनिमम, ये जरूर आप करें। और खासकर जब थोड़ा सा मन शांत हो रहा है डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें। लेकिन इसके साथ ऐड भी करेंगे हम, सिर्फ डीप ब्रीदिंग नहीं, डीप ब्रीदिंग करते हुए जब हम इनहेल कर रहे हैं उस समय क्या सोचना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ हैं, शांति के सागर की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। तो हमने दोनों काम कर दिए, शरीर का भी मन का भी। सो डीप ब्रीदिंग, इससे आप देखेंगे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, और रात को सोने से पहले अगर नींद नहीं आ रही है रात को, आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करिए, मैं शांत हूं, संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी नींद भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्लोली रिपीट अ काम वर्ड और फ्रेज टू योर सेल्फ लाइक रिलैक्स, मन को समझाना रिलैक्स, टेक इट ईजी वाइल ब्रीदिंग डीपली, या ओम शांति आप ये बोल सकते हैं अपने आप को, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, या ओम शांति, जो आपको अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि गुस्सा हमारा खत्म होना, गुस्से का एंटीडोट क्या है, पीस। गुस्सा एक्चुअल में खत्म नहीं करना है, जितना शांति बढ़ाते जाएंगे गुस्सा अपने आप खत्म होना, और अगर सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो बहुत लोग बोलते हैं, कई लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने गुस्सा कंट्रोल करा 15 दिन के बाद ऐसा गुस्सा आया जो आज तक नहीं आया था कभी, है ना, क्यों, क्योंकि अंदर से मन को शांत नहीं किया, सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की सुपरफिशियल लेवल पे, वो नहीं करना है। सेकेंड हमने समझा, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, काउंसलिंग में इसको यूज किया जाता है कि हमें अपनी सोच को क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बी केयरफुल, चेंज द वे यू थिंक, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, अपनी सोच को हमें बदलना है। बी केयरफुल ऑफ वर्ड्स लाइक नेवर और ऑलवेज व्हेन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ और अदर्स, ये बहुत ध्यान से चूज करना है। कोई एक बार लेट हुआ हम उसको क्या बोलते हैं, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, किसी ने एक बार फोन नहीं छोड़ा, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो, ऑलवेज शब्द बहुत ध्यान से चूज करना है ना। मान लो उसने 10 में से 8 बार फोन छोड़ दिया था, 2 बार नहीं छोड़ा, तो 8 बार अप्रिशिएट भी करना है, और ऑलवेज और नेवर शब्द को बहुत ध्यान से, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, कभी नहीं बोलना है ये, क्योंकि यहां हम बैठे हैं, हम सब बहुत बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी है, तभी आप यहां बैठे हैं। दुनिया से कंपेयर अगर आप करेंगे तो पाएंगे कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया कर सकते हैं, जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन जब ध्यान पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पर होता है तब फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। थर्ड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, इसको हिंदी में कहा जाता है समाधान स्वरूप। परमात्मा कहते हैं समस्या स्वरूप नहीं बनना है, क्या बनना है, समाधान स्वरूप। एक सिचुएशन आई, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मन को यह समझाना है, ये हो गया वो हो गया, सॉल्यूशन क्या है, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे गुस्सा हमारा खत्म, क्योंकि गुस्सा और इरिटेशन आपस में कनेक्टेड है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते जा रहे हैं दिन भर, अब गुस्से के रूप में बाहर निकलेगा फिर वो, तो इसलिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। फोर्थ, बेटर कम्युनिकेशन. कई बार सामने वाले से बात करना बहुत ज़रूरी होता है. मान लो आपको कुछ अच्छी बात नहीं लगी किसी की, क्लियर कम्युनिकेशन. रिलेशनशिप में हम एक बात हमेशा समझाते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम बात नहीं करते हैं सामने वाले से, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन. जब उसका मन शांत है, जब वो रिलैक्स है, आप उससे बात करिए, 15 मिनट लीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए. लिसन टू अदर्स ऑल्सो. मान लो हम कुछ सॉल्यूशन करने गए तो ये नहीं कि अपना सारा सुना दिया बस. अगर वो भी सामने वाला कह रहा है देखो आप भी उस जगह गलत थे, अगर थे तो स्वीकार करिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, वो गलत था, आई विल इम्प्रूव, लेकिन ये वाला संस्कार आप भी थोड़ा सा चेंज करिए. मुझे पता है सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बट ये मैं संस्कार चेंज करता हूँ, एक आप करिए. तो बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं. गुस्सा आ रहा है किसी पर, उसको बताइए. जैसे कहा ना एक्सप्रेसिंग इन अ पॉजिटिव वे, उसको बताना कि मेरे आपने ये बोला था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था, प्लीज़ इसको आगे से नहीं करना. और एक तरीका जो है एक्सप्रेस करने का, आपको गुस्सा आ रहा है, राइट इट डाउन. लिखने से इमोशनल हीलिंग होती है, इसलिए हम सबको ये प्रैक्टिस करनी है. जब भी मन शांत है, या दिन में 10 मिनट तो आप लिखने का वैसे ही बना लीजिए, रात को सोने से पहले या शाम को कोई समय, सारा लिखिए अंदर, मेरे को ये फील हो रहा है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला उसको कैसे मिसयूज़ करे हमें पता नहीं है. तो कुछ इमोशंस हमें खुद हील करना आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ, मेरे को ये फील हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए. लिखते लिखते हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी. तो गुस्सा नॉर्मल है या नहीं है, गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कभी भी ये नहीं बोलना है गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि बचपन से हमारे फीड है ये, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, गुस्से के बिना काम नहीं चलता, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कई जगह पर. बट गुस्सा इज नॉट अ सॉल्यूशन. गुस्सा मींस नेगेटिव एनर्जी. गुस्सा मींस आई एम नॉट इन माय कंट्रोल, मेरा मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो इसके लिए तीन थॉट्स, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पहला. सेकंड क्या था? शांति मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है. तीसरा, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता. ठीक है, और कोई गुस्सा करे जब आप पर, तो समझ जाइए बेचारा परेशान है, दुखी है, असंतुष्ट है. तो कोई गुस्सा कर रहा है तो दुखी नहीं होना है, बल्कि उस पर क्या आना चाहिए, उस आत्मा पे हमें रहम आनी चाहिए, दया. बेचारा बहुत परेशान है. और उनको कौन से वाइब्रेशन, उनको ब्लेसिंग्स देनी है. कौन सी? आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आप सदा शांत रहें. लेकिन इतना ईजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे. पूरा ध्यान खुद पर ले आए. मेरा मन बिल्कुल शांत है. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. I am a peaceful energy. शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है, ये मेरा स्वभाव है. कोई भी परिस्थिति, मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। I am powerful. I am stable. विजुअलाइज करें, मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल शांत, मेरा सफेद प्रकाश इस पूरे शरीर में फैल रहा है। देखें, पूरे ब्रेन में सफेद प्रकाश, चेहरे में, नेक, शोल्डर्स, हाथ, पीठ, कमर, पैर, धीरे धीरे सफेद प्रकाश, वाइट लाइट पूरे शरीर को शांत कर रही है। मेरे अंदर की सब नेगेटिविटी दूर हो रही है। स्ट्रेस, एंगर, अटैचमेंट सब दूर हो रहे हैं। खुद से प्रॉमिस करें, मुझे हर रोज खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालना है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप ऐसे नेक्स्ट वीक कौन कौन प्रैक्टिस करेगा, कम से कम एक हफ्ते के लिए फिर से हाथ उठा लीजिए। लिखेंगे भी डायरी में, सबके पास है डायरी, है ना? एक डायरी लगानी भी है जिसमें हर रोज सुबह उठकर रात को सोने से पहले कुछ कुछ अच्छा जरूर लिखना है। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। आप सब खुश रहें, शांत रहें।